अब आगे मरियम का किस्सा, जकरिया कौन थे? खालू थे। मरियम का आगे किस्सा, जो इन्हीं की किफालत में पली, और ये किस्सा हम सूरत आल इमरान में पढ़ चुके हैं। बस कुरफिल किताब ही मरियम, इस किताब में मरियम का भी वाकया बयान करो, जबकि वो घर के लोगों से लहदा होकर मशर की जानेब आई और इन लोगों की तरफ से पर्दा कर लिया। फिर हमने इसके पास अपनी रूह यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, बस वो इसके सामने पूरा आदमी बनकर जाहिर हुआ। ये कहने लगी, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तू कुछ भी अल्लाह से डरने वाला है। इसने जवाब दिया कि मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ कासिद हूँ, तुझे एक पाकीज़ा लड़का देने आया हूँ। कालत अन्ना यकून ली गुलाम वलम यमससनी बशर वलम अकुम बगीशा। कहने लगी, भला मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है, मुझे तो किसी इंसान का हाथ तक ना लगा और ना मैं बदकार हूँ। आयत 20 पे 12 रुब होता है। बीबी मरियम के जे उजर तो सारे जानियन है। ठीक है, जकरिया अलैहि सलाम ने भी कह दिया औलाद कैसे होगी, लेकिन वहां तो फिर भी कुछ था, इधर तो कुछ है ही नहीं। तो एक नौजवान बच्ची 12-13 साल की उम्र, जिसने कभी गंदी चीजें ना देखी ना सुनी ना पढ़ी, जिसका किसी मर्द के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं, उसको अगर इतनी बड़ी आजमाइश में डाल दिया जाए तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। इसको सोचकर मरियम अलैहिस्सलाम पे अल्लाह की रहमत की दुआ करें। औरत की सबसे कीमती चीज़ इज्जत है, और बीबी मरियम इज्जत की तरफ से आजमाई गई। क्या हुआ? उसने कहा, बात तो यही है, लेकिन तेरे परवरदिगार का इरशाद है कि वो मुझ पर बहुत ही आसान है, हम तो इसे लोगों के लिए एक निशानी बना देंगे और अपनी खास रहमत। ये तो एक तयशुदा बात है, बस वो हमल से हो गई और इसी वजह से वो यकसू होकर एक दूर की जगह चली गई। फिर दर्दे जाए इसे खजूर के तने के नीचे ले आया, बोली, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती। कालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा, और लोगों की याद से भी भूली बिसरी हो जाती। ये क्यों कहा? शायद दर्द की वजह से हर औरत ही उस वक्त कहती होगी, लेकिन आम औरतों को तो उस दर्द के बाद एक एप्रिसिएशन की उम्मीद होती है ना। औरत जब बीवी से माँ बनती है ना, तो उसका रुतबा बढ़ जाता है। बहू से आपके पोते की माँ बनती है तो जरा सी आप भी दब जाती हैं कि अब ये मेरे पोते की माँ है। मरियम अलैहिस्सलाम को तो ऐसी कोई एप्रिसिएशन की उम्मीद ही नहीं थी, बल्कि गम क्या था कि अब इस बच्चे का करूंगी क्या। इतने में इसे नीचे से ही आवाज दी गई, आज़ुर्दा खातिर ना हो, दिल मैला ना कर, तेरे रब ने तेरे पाँव के तले एक चश्मा जारी कर दिया और इस खजूर के तने को अपनी तरफ हिला, ये तेरे सामने तरोताजा पक्की खजूरें गिरा देगा। कुरान पाक में दो चश्मों के फूटने की बात है, एक चाहे जमजम और एक ये चश्मा। उधर भी औरत और उसका बच्चा, इधर भी औरत और उसका बच्चा। दुआ करें अल्लाह हमारे से और हमारी नस्लों से खैर के चश्मे फोड़ दे। औरत में बड़ी शान है, अल्लाह ने औरत को इज्जत भी बहुत दी। दूसरी बात, असबाब इख्तियार की है, खजूरें ऐसे नहीं गिरी, दरख्त को हिलाया मूवमेंट से, डिलीवरी आसान हो गई, खजूरें भी मिल गई। कौन सी वहाँ माँ या सास बैठी थी कि जो कोई हलवा लेकर आती या कोई वो काढ़ा लेकर आती, कोई उसको ताकत की चीजें खिलाती। तो जिनका कोई नहीं होता, उनका रब होता है। अपनों को याद करके रोया ना करें, बल्कि कहा करें हस्बी अल्लाह। कभी आप के ऊपर यह हालत गुजरे और परदेश में हो और माँ को नहीं याद करें, अल्लाह को याद करें। माएँ क्या कर सकती हैं, और भी उनकी जान पे बनी होती है ऐसे वक्त में, उनको तो बताना ही नहीं चाहिए, बाद में बताएं। आप तो बच्चे हो सकते हैं, माँ का बीपी हाई है, लो हो जाए, तो अल्लाह पे नजरें लगाइए। लोग तो सब झूठे सहारे, बस इनको देख के खुश हुआ करें। रिश्ते जो होते हैं ना, ये एनर्जी ड्रिंक होते हैं, पी लिया खुश हो गए, घर गए बच्चे को देखा, पोते ने वैसे को थोड़ा गुनगुलाया किया, हंसे, चलो जाओ पढ़ो भाग जाओ, मैंने पढ़ना है। प्यार कीजिए बस, हर वक्त ये जिम्मेदारियां भी निभाने की अब आपकी उम्र नहीं रही। जिनके बच्चे वो पाल के खुश हो, ताकि उनको भी अपने बच्चों से कुर्ब महसूस हो। तदब्बुर और अमल शुरू की 25 आयतों पर, अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखते हुए चुपके चुपके कबूलियत के यकीन से दुआएं मांगिए। दीन के तमाम अहकाम पर पूरी तरह अमल करने की कोशिश करें। किसी भी काम के लिए मुकम्मल असबाब इख्तियार करें, फिर अल्लाह पर तवक्कुल करें। कुरान से रहनुमाई, अल्लाह ताला से हमेशा अच्छा गुमान रखें, क्योंकि अल्लाह बंदे के साथ वैसा ही मामला करता है जैसा बंदा इसके मुतल्लिक गुमान रखता है। अपने वालदैन को आज कोई ऐसी चीज़ पेश करें जो वो पसंद करते हों, हजरत याहिया के अमल पे, अपनी ख्वाहिशात को अपनी सलाहियतों के मुताबिक नहीं बल्कि अल्लाह की शान के मुताबिक मांगे। अल्लाह से कहा करे, अल्लाह मेरे में तो खूबी कोई नहीं, मुझे आता जाता कुछ नहीं, अल्लाह मेरे पास तो कोई हुनर ही नहीं, कोई गुण नहीं, ना मुझे पकाना आता, ना मुझे सफाई करनी आती, ना मुझे कंप्यूटर आता, यानी जो जो भी काम है ना उसको सामने रख के कहा करें अल्लाह आता जाता कुछ नहीं है, करा ले। और यही समझ ले, आगे मूसा का भी किस्सा आएगा सूरह ताहा में, अल्लाह अचानक राह जाते लोगों से भी अपने दीन के काम ले लेता है। और कई लोग क्या कुछ दावे कर रहे होते हैं और अल्लाह उनसे काम नहीं लेता, कोशिश करने वालों से नहीं लेता। ये सिर्फ अल्लाह का फैसला है कि आप और मैं यहाँ बैठे हैं, किसी इंसान के बस का ये रोग नहीं है। तो जब वो काम लेना चाहता है ना बंदे से, तो वो परिंदों से भी ले लेता है। अब अबीलों से अपने घर का दिफा नहीं करा लिया, तो अगर आज आपके मेरे जैसे नाचीज लोगों से अल्लाह दीन की कुरान की को खिदमत ले ले, तो ये हमारा गुण नहीं है, डाउन टू अर्थ रहे, आजिज बने, अपनी सीवियां ले लेके ना फिरे। उनको कुछ नहीं मिलता सीवियां लेके आने वालों को, जॉब लेने वाले कितने खड़े हैं बाहर, पूरी दुनिया देखिए इस वक्त किस एक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम का शिकार है। कई 10 10 20 20 साल से क्या क्या काम करने की कोशिशों में लोग बैठे, तो नहीं होता। तो कह दीजिए वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो अल्लाह से अल्लाह की शान के मुताबिक मांगिए, गौर व फिक्र की बात, चुपके से दुआ करना इख्लास के ज्यादा करी, और रिया और नमूदो नुमाइश से ज्यादा पाक है। तो ये बहुत साहब के लाखों वाली दुआएं भी नहीं पसंदीदा, राग लगाने नज्मों नातों की सूरत में पढ़नी, कोई करता है तो हम तो कुछ नहीं कह रहे उसको, लेकिन अपने लिए सीधी सीधी तो दिल से उबले, ऐसे जैसे फ्लश करता है ना चश्मा, फिर वो सीधी ऊपर जाती है, दिल से जो निकलती है ऊपर जाती है। अपनी कमजोरी और आजजी को वसीला बनाना अल्लाह तक पहुंचने का महबूब तरीन वसीला। बंदे पर वाजिब है कि वो रिस्क की तलाश में असबाब को अपनाए, मींस को यूज किए बगैर बिस्तर पे लेटा रहे एक मर्द, और के जॉब नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा, तो ये बेकार बात है। हालत निफास में सबसे ज्यादा बेहतर चीज ताजा खजूर यानी रुतब है। खाइए इस नियत से, आज इफ्तारी में खा लीजिएगा रुतब, और आप देखिए कि आज साइंस जिस चीज़ों को एक कह लीजिए कि मेडिकली प्रूव कर रही है, कुरान ने 1400 साल पहले बता दी बात है। अल्लाह अकबर। अब खाने से आंखें ठंडी होती हैं, उसका जिक्र आयत 26 है, फकुली वशरबी वकर्री अईना, आप चैन से खा पी और आंखें ठंडी रख, अगर तुझे कोई इंसान नजर पड़ जाए तो कह देना, ये आप भी लिख लें, इन्नी नजर तुले रहमानी सोमा, मैंने अल्लाह रहमान के नाम का रोजा रखा हुआ है, फलन उकल्लिमल यौम इंसिया, मैं आज किसी शख्स से बात ना करूंगी। चुप का रोजा हमारे कल्चर में ये लफ्ज मारूफ है, कहते हैं पहले दौर में ये रोजा रखा जाता था, मैं कहती हूँ आज भी है, रोजा रख के ज्यादा ना बोले और बुरी बात तो करनी नहीं। बुखारी की रिवायत है, मल्लम यदा कौल जूरी व मिला भी वलई सलील्ला ही हार जतन यदा शराब बहुत आम, तो कम बोली, अपनी सारी एनर्जी सेव किया करें अल्लाह से बातें करने के लिए। दूसरी बात बड़ी अहम है, अपनी सफाइयाँ पेश ना करें। देखिए मरियम अलैहिस्सलाम की जगह अगर आज कोई ऐसी सिचुएशन में हो और आपसे मशवरा करे, तो आप क्या कहेंगे, खूब सफाई पेश करो अपनी, देखो बोलोगी नहीं तो क्या होगा, बताना चाहिए, अपना दिफा करना चाहिए है, ना बोलें तो अगला सहता है हम झूठे हैं, कह सकते हैं ना। और किस हद तक हुक्म भी है कि अगर आप पे कोई इल्ज़ाम लगे तो उसकी सफाई दें, जैसे हज़रत यूसुफ ने दी, लेकिन आला दर्जा मैं नहीं बोलूंगा, मेरा वकील अल्लाह, लोग वकीलों की बात तक करवा देंगे आपसे, वकील करवाएं, ये करें वो करें, क्या जरूरत है। जो अल वकील पे नजरें रखे उसको दुनिया के किसी वकील की जरूरत नहीं होती। तो अपने जायदादों के मामले हों, ने आपकी जमीन पे कब्जा कर लिया, ये कुछ है ना हमारे इर्द गिर्द, तो कोई आपका माल खा गया, किसी ने कुछ कर दिया, अल्लाह पे डाल दीजिए, असबाब इख्तियार कीजिए, लेकिन याद रखिए असबाब में तासीर मुसब्बुल असबाब के पैदा करने से होती है, ऐसे नहीं है कि अल्लाह ताला आपको हाथ पे हाथ रखकर किसी चीज के साथ जोड़ दे। तो हजरत मरियम के इस किस्से में हमारे लिए खवातीन होने के नाते बहुत से असबाक और भी हैं, जिसको आप फिर बाद में किसी मौके पे समझेंगे। आगे देखते हैं। फअतत बिही कौमहा, अब सोचिए एक न्यू बॉर्न बेबी और एक 12-13 साल की बच्ची अनमेरिड, और एक बेबी लेके कहाँ आ रही, ये आजमाइश नहीं है? मुझे तो बीबी हाजरा ही याद आ रही है आज। उधर भी बच्चा, इधर भी बच्चा, उधर शौहर छोड़ के आ गए अल्लाह के हुक्म पे, इधर बाप है ही नहीं, शौहर है ही नहीं, बच्चे का बाप नहीं, आपका शौहर नहीं, और अब इस औरत की आजमाइश देखिए, जो कौम ने बातें छांटती हैं, क्योंकि लोगों का काम ही है कि सिर्फ बातें करना, करने दीजिए, आपका क्या जाता है। अब हजरत ईसा अलैहि सलाम को लिए हुए वो अपनी कौम के पास आई, सब कहने लगे, या मरियम, ए मरियम, तूने बड़ी बुरी हरकत की, या उख्त हारून, ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था, ना तेरी माँ बदकार थी, यानी माँ बाप के नाम के ताने दे रहे हैं। अब मरियम का टेम्पर देखिए क्या दिल पे गुजरी, क्योंकि बंदा माँ बाप की बात पे जरा सेंसिटिव हो जाता है ना। क्या बोली, ये देखिए इशारे को, फाशारत इलैह, मरियम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया, यदि ऐसे आलू कई फन उकली मुमन का नफिल महदी सबिया, सटपट आउट है, क्या कहने लगे, सब कहने लगे, लो भला हम गोद के बच्चे से बातें कैसे करें, मदान जुजल बातें कह रही हो। काला इन्नी अब्दुल्ला, बच्चा बोल उठा के मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इसने मुझे किताब अता फरमाई और मुझे अपना पैगंबर बनाया, और इसने मुझे बाबरकत किया जहां भी मैं हूँ, और इसने मुझे नमाज और जकात का हुक्म दिया, मादुम तो हैया, मैं जब तक जिंदा हूँ। 5 चीजें न्यू बॉर्न बेबी के मुंह से लोगों ने सुन ली, ये एक आयत, बल्कि दो लगा लीजिए, 30 और 31, सारी क्रिश्चियनिटी की दीवारें और बुनियादें हिलाने के लिए काफी है। इन्नी अब्दुल्ला, जिसका नाम लेके तुम कुछ कह रहे हो, वो खुद अपने आप को क्या कहता है, ये अहम होता है ना। तो ईसा अपने आप को अब्दुल्ला कहते हैं, तुम उसको अल्लाह का बेटा कैसे कर सकते हो। फिर आगे मजीद 6ठी बात, वबर्रम बिवालिदती, और इसने मुझे अपनी वालिदा का खिदमत गुजार बनाया है और मुझे सरकश और बदबख्त नहीं किया। यहाँ नोट किया, वालिदैन नहीं आया, हजरत याया के जिक्र में वालिदैन, हम उम्र थे दोनों, और ईसा के जिक्र में भी वालिदा थी, बाप का जिक्र ही नहीं है। और मुझ पर मेरी पैदाइश के दिन और मेरी मौत के दिन और जिस दिन के मैं दोबारा खड़ा किया जाऊंगा, सलाम ही सलाम है। याहिया पे सलाम अल्लाह ने भिजवाया, ईसा खुद पर सलाम कह रहे हैं। एक बड़ा प्यारा सा नुक्ता है, इस पे बात भी होती है तफसीर में, ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम कौल अल-हक़ अल्लज़ी फ़ीही यमतरून, ये है सही वाक़िया ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का, यही है वो हक बात जिसमें लोग शक और शुबे में मुबतला हैं। अल्लाह को पता था ईसाइत के कितने मुख्तलिफ फ़िरके हो जाएंगे और वो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में गलत बातें करेंगे, तो अल्लाह ने वो जड़ बुनियाद दिखा दी, ईसा की असल हकीकत, अब इससे ज़्यादा कहाँ कोई खोलेगा। अब इसकी बुनियाद पर अगली कई आयात में ईसाइत के मुख्तलिफ अकायद पे तनकीद, मा कान लिल्लाह यत्तखिज़ मिन वलद, अल्लाह तआला के लिए औलाद का होना लायक नहीं, वो बिल्कुल पाक ज़ात है, वो तो जब किसी काम के सर अंजाम देने का इरादा करता है तो इसे कह देता है कि हो जा, वो इसी वक्त हो जाता है, यानी साहिबे कुन फयाकून को औलाद की क्या ज़रूरत। मेरा और तुम सब का परवरदिगार सिर्फ अल्लाह ताला है और तुम सब इसी की इबादत करो, यही सीधी राह है, लेकिन लोग नहीं मानते। शुरू में तो अकीदा यही था ईसा की जिंदगी तक, बाद में क्या हुआ, फख्तलफ अल अहज़ाब मिन बैनिहिम, फिर ये फिरके आपस में इख्तलाफ करने लगे, बस कुफार के लिए वईल है, एक बड़े सख्त दिन की हाजिरी से क्या खूब देखने सुनने वाले होंगे इस दिन जबकि हमारे सामने हाजिर होंगे, लेकिन आज तो ये जालिम लोग सरी गुमराही में पड़े हुए। वानज़िरहुम यौम अल-हसरत, इसको दिया अल-अम्र, क़यामत के नामों में से एक नाम यौम हसरा, और इन्हें इस रंजोख अफसोस के दिन का डर सुना दे जबकि काम इंजाम को पहुंच चुके होंगे, वहुम फी गफला, और ये लोग गफलत में, वहुम ला युमिनून, और बेईमानी में ही रह जाएंगे। إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے اور سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹا کر لائے جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ الوارث. تو آپ دیکھیے کہ کیا خوبصورت طریقے سے یہ قصہ بیان کیا. سورت کا نام بھی مریم, قصہ ہے مریم. اب اس کے بعد اس نبی کا قصہ جن کے بغیر شاید ہی کوئی پارہ پورا ہوا. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کر, بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے. جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان, آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنیں نہ دیکھیں, نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکے. میرے مہربان باپ, آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں, تو آپ میری ہی مانیں, میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی راہبری کروں گا. یہاں اس پارے کے تھیم کو حضرت ابراہیم اور ان کے باپ کے تناظر میں بھی لیجئے گا. لیگیسی ورسز انہیریٹنس. باپ کفر پہ تھا, بیٹا امام الانبیاء بن گیا, لیکن ایک نیکی باپ کے کھاتے میں نہیں جائے گی کیونکہ کفر تھا. تو آپ کی اولادیں جتنی بھی نیک ہو جائیں, ایٹ لیسٹ آپ کو اپنی توحید, رسالہ اور آخرہ کے عقیدے کو ٹھیک کرنا ہے, پھر انشاءاللہ حافظ بچوں کا حفظ بھی پہنچے گا, ان کی سفارشیں بھی ملیں گی اور عامل بچوں کے عمل بھی ملیں گے, اور علم پھیلانے والی نسلیں جو ہیں وہ آپ کو تبھی فائدہ دیں گی. تو اپنے عقائد کی اصلاح کرنی ہے. یہ آبتی, اور اس میں تو ہم نے پورا ایک کورس کیا تھا ذی الحج میں, پیرس سے کیا تھا. بہرحال اس کا لنک بھی بھیج دیں گے. بہت خوبصورت طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کا تبلیغ کرنا باپ کو اور کفر والے ماحول کو ساتھ لے کے چلنا, اس میں کافی گائیڈ لائن تھی ہمارے لیے. تو آپ ذرا انداز دیکھیے, باپ کتنی بڑی بڑی دھمکیاں دے رہے ہیں اور بیٹا کیا کر رہے. یا آبادی, پیارے ابا جی, میرے ابا جان, آپ شیطان کی پرستش سے باز آ جائیں. شیطان تو رحم و کرم کرنے والے اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی نافرمان ہے. ابا جان, مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ پڑے, کیا آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں؟ اس نے جواب دیا کہ ابراہیم, کیا تمہارے معبودوں سے روح گردانی کر رہا ہے؟ سن, اگر تو باس نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا, جا ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ ہو جا. آج ذرا سوچیے, جب اس کو کوئی ذریع سلینگ ورڈز میں دیتا ہے تو یہ گالی ہیں. یہاں بیٹھ کے دینا نہیں چاہ رہی ایسا کوئی لفظ آپ کو جو اخلاق سے گراؤ, لیکن باپ گالیاں دے رہا ہے بیٹے کو. بیٹے کا جواب, قال السلام علیک. یہ ہے اسلام, یہ اسوہ رسول, یہ ہے اسوہ ابراہیمی. وہ کہتے ہیں نا, گالیاں سن کے بھی بد مزہ نہ ہوا. ہم پہلے بڑے اچھے ہوتے ہیں, ذرا کوئی بری بات کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اب تجھے میں جانے دوں گی, بھلا مجھے بھی زبان دی ہوئی اللہ نے. نہ نہ, سلام علیک کہا. اچھا تم پر سلام ہو, میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا, وہ مجھ پر حد درجہ مہربان ہے. میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں. یہ بھی لکھیے, الولا والبرا, الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, برادری اور خاندان کا نام لے کے شرک کی رسموں میں نہیں شامل ہونا, اور خاندان کی خوشی کی خاطر گناہ والی محفلوں میں نہیں جا کے بیٹھنا کہ اب کیا کرے, شادی کا موقع نہ گئے تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا. کلیئرٹی. اور یہ صورت ممتحنہ تک پہنچ کر آپ دیکھیں گے وہاں تو ان کا انداز ایسا بے لاگ ہے کہ بندہ کانپ کے رہ جائے. ہم ساری زندگی یہ چھوٹے چھوٹے بت ہی نہیں توڑ سکے, اللہ کو ناراض دن رات کرتے ہیں, دوسروں کو نہیں کر سکتے, صرف اس لیے کہ نہیں پھر ہم تنہا رہ جائیں گے, تو ایسا نہیں ہوتا. صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا, مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہوں گا. اس کو ہائی لائٹ کیجیے, ولم اکم بی دعا ربی کی شقیہ. شروع میں حضرت زکریہ کی دعا, اب ان کی دعا آ گئی, دعاؤں سے بھرا ہوا پارا. نبیوں کی دعائیں آپ کو اور بھی آگے ملیں گی, یعنی جب بھی رب سے کچھ مانگا تو ملا. اب آگے دیکھیں, فلم ما تزلہم, جب ابراہیم ان سب کو اور اللہ کے سوا ان کے سب معبودوں کو چھوڑ چکے. اس کو ہائی لائٹ کریں, پہلے چھوڑنا پڑتا ہے پھر ہی آگے جائیں گے. دیکھیں, اب اوپر جا رہے ہیں تو پچھلے سٹیپ سے پاؤں اٹھائیں گے, تبھی تو اوپر والے سٹیپ پہ جائیں گے نا. تو عزت ان کو ملتی ہے, بلندی ان کو ملتی ہے جو ایک ایک کر کے غلط چیزوں کو چھوڑتے جاتے ہیں. تو کیا ملی خوشخبری؟ تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے اور دونوں کو نبی بنا دیا, और इन सबको हमने अपनी बहुत सी रहमतें अता फरमाई और हमने इनके जिक्र जमील को बुलंद दर्जे का कर दिया। तो अगर आपको भी अल्लाह से ऐसी खुशखबरियाँ चाहिए तो आप भी नापसंदीदा चीज़ें छोड़ दीजिए। और यहाँ ये बात करते सुनते वक्त जैसा भी लीजिए। अच्छा, हमारी तौहीद इस रंग में बड़ी कच्ची है। अल्लाह का शुक्र है कब्रों पर जाने वाले हैं लेकिन सारे नहीं, और बहुत कुछ शिर्क के मजहर हमारे मुल्कों में भी हैं। लेकिन जो शिर्क नजर आता नहीं और जिसको कोई शिर्क समझता नहीं, वो ये शिर्क है कि अल्लाह की नाराजगी के काम बंदों को राजी करने के लिए करना। और नाम पता ऊपर से क्या देते हैं, सिला रहमी है जी, रिश्तेदारों के हकूक भी होते हैं। भाई अल्लाह के हक बंदों को ना दीजिए, यहाँ जुमला लिखिए अल्लाह के हक अल्लाह को दीजिए, बंदों के हक बंदों को दीजिए। कुरान पढ़ने के बाद अमूमन घरों में खानदानों में फितने आते हैं, लोग ताने देने शुरू हो जाते हैं। अब तुम ये नहीं रही, तुम घर को टाइम नहीं देती, तुम कुरान छोड़कर अब बैठी हो, घर मेहमान आ जाएंगे तो तुम यहाँ बैठी हो, तो वो ये हो पता कह रहा होता है। लिखे बल्कि मैं नाम ले लेती हूँ, हमने ससुराल के लफ्ज को इतना बड़ा हवा बनाया होता है कि माजरत के साथ अल्लाह के भी कुछ हकूक उनको दे देते हैं। और जब कुरान के बाद हमें अपना मुकाम समझ आता है तो अल्लाह वाले हक बस वापस लेते हैं, क्योंकि ला तातली मखलूकन फी मासियतिल खालिक, खालिक की नाराजगी में मखलूक की बात नहीं मानी। तो फिर वो चीखते हैं तुम्हें क्या हो गया, ये तुम बदल गई, पहले तो बोलती नहीं थी अब तो ये क्या। यही तो हजरत उमर की बहन के साथ हुआ था, जब इस्लाम आ गया तो हजरत उमर के आगे खड़ी हो गई, कह रही खबरदार मैं नहीं हाथ लगाने दूंगी, तुम पाक होके आओ फिर दूंगी। उमर कहने लगे तू तो कभी मेरे आगे बोली नहीं, तुझे क्या हो गया। तो कुरान आपको सही हक लेना सिखाता है, इसी से सुकून है। आप अल्लाह के हक अल्लाह को दें, बंदों को दें, आप भी खुश, बंदे भी खुश, रब भी खुश, और वही बंदे फिर कल आपसे खुश होंगे। ये भी याद रखिए, ये जो गसब करते हैं ना मकूक, जान सुखाई रखते हैं लोगों की, गले का फंदा बना दिया हमने इन रिश्तों को, ऐसा नहीं है। तो रिस्पेक्ट करना और चीज़ है, और होली समझना किसी चीज़ को और चीज़ है। पेरेंट्स हो, इवन शौहर, पेरेंट्स, ससुराल, इनकी रिस्पेक्ट तो कीजिए, पर ये होली नहीं है, होली अल्लाह की ज़ात है, ये उसके रसूल की बात है। अब आगे हजरत मूसा का किस्सा शुरू होगा आगे। वस्कुर फिल किताबी मूसा इन्नहु काना मुखलसन व काना रसूलन नबिया। इस कुरान में मूसा अलैहि सलाम का जिक्र भी कीजिए जो चुने हुए और रसूल और नबी थे। देखिए मुखलस अल्लाह हमें बना दे, चुने हुए अल्लाह हमें भी चुन ले अपने दीन के लिए। तदब्बुर और अमल, किसी भी मुमकिन वसीले से हर मजलूम और मजबूर का दिफा किया करें। आपको जो भी मुसीबत पहुंचे इस पर अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखिए। अपने वालदैन के लिए अल्लाह से मगफरत और इसकी रजा की दुआ मांगे। कुरान से रहनुमाई, वालदैन के साथ हुस्ने सलूक अम्बिया और सालेहीन की सिफत है। अपने से कम उम्र या कम मर्तबा अफराद से इल्म हासिल करने में आजिज़ी दिखाइए, यानी उस्ताद आपसे उम्र में छोटा ही क्यों ना हो या आपसे स्टेटस में छोटा ही क्यों ना हो, फिर भी उसके सामने आजिज़ बनिए। हर किस्म के शर और फसाद की जगहों से दूर रहिए। गौर व फिक्र की बातें, जहाँ भी रहें नफा बख्श बनकर और भलाई की तालीम देने वाले बनकर रहें। पैदाइश, वफात और दोबारा उठाए जाना, इन औकात में इंसान को रहमत इलाही की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सच बोलना और उस पर जमे रहना, अल्लाह की वाहदानियत, अम्बिया और रुसल और क़यामत की तस्दीक और अहकाम इलाही पर अमल करने से बंदा सिद्दीक बनता है। दावत इल्लाह में अहम चीज़ पैगाम को आहिस्ता और थोड़ा थोड़ा बताना होती है। एकदम सब बहुत बताने लग जाए तो भी सुनने वाला आउट हो चुका होता है। चलिए हजरत मूसा का किस्सा कंटिन्यू करते हैं। बना दई ना हो मिन जाने बितूर इल ऐमन, हमने इसे तूर की दाई जानिब से आवाज की और आसकुई करते हुए इसे करीब कर लिया, और अपनी खास मेहरबानी से इसके भाई को नबी बनाकर इसे अता फरमाया। दुआ कीजिए अल्लाह में भी हमारे घर वालों की मुआवनत अता फरमा दे, क्योंकि घर के लोग जब आपके दीन के साथी बनते हैं ना तो फिर बड़ी खैर आती है, फिर तखाफुन अलौमत अलायम वाली भी कैफियत कम हो जाती है, और एक अकेला दो ग्यारह, मूसा के साथ तो खास तौर पर ऐसा ही हो रहा है। इस किताब में इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाकया भी बयान कीजिए, वो बड़े ही वादे के सच्चे थे और था भी वो रसूल और नबी। वो अपने घर वालों को बराबर नमाज और जक़ात का हुक्म देता था और था भी अपने परवरदिगार की बारगाह में पसंदीदा और मकबूल। ये है लेगेसी, वर्सेस इनहेरिटेंस। नमाज का वक्त हो और आप अपने बच्चे को नमाज के लिए ना भेजें और उसके एक घंटा बाद उठा के नला दुला के स्कूल भेज दें, तो आप अच्छी माँ नहीं है। सॉरी, माँ से माजरत, आपको बच्चे की नींद ज्यादा प्यारी है। नहीं, जरा और सो ले मेरा बच्चा, रात देर से सोया था, सुबह जल्दी उठ गया। ना ना ना, हजरत इस्माइल का बहुत कम जिक्र है कुरान में, आगे तो बहुत प्यारा आने वाला सूरह साफात में। यहाँ देखिए, वहां खुद ओबीडियंट बेटे, तो यहाँ एक जिम्मेदार बाप है। मर्द का ये जिम्मा है कि वो बीवी बच्चों को नमाज, ज़कात, तौहीद इसका हुक्म भी दे और उनके इल्म की कोशिश करे। किसी शौहर को ये हक नहीं है कि बीवी को इल्म से रोके, ये तो अपने आप को खुद जाहिल रखने वाली बात है। वस्कुर फिल किताब इदरीस, और इस किताब में इदरीस अलैहिस्सलाम का भी जिक्र कीजिए, वो भी नेक किरदार पैगंबर थे, हमने उन्हें बुलंद मुकाम पर उठा लिया। अब इतने अंबिया का तذکرہ फरमा के कहा, उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन्नबीयीन, यही वो अंबिया हैं जिन पर अल्लाह ने फजल व करम किया, जो औलाद आदम में से हैं और इन लोगों की नस्ल से हैं जिन्हें हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में चढ़ा लिया था, और औलाद इब्राहिम और याकूब से, और हमारी तरफ से राह याफ्ता और हमारे पसंदीदा लोगों में से। क्या खूबियां थी इनकी, इनके सामने जब अल्लाह रहमान की आयतों की तिलावत की जाती, ये सजदा करते, रोते, गिड़गड़ाते, गिर पड़ते थे। आयते सजदा, अम्बिया का क्या खूबसूरत नक्शा खिंचा इस आयत में। यहाँ तक तो बात वो थी कि जिसको आप कह सकते हैं कि नबियों ने अपने हिस्से का काम किया, थोड़ा अरसा बाद में औलादें उन्हीं के नक्शे कदम पे रहीं, लेकिन एक जनरेशन दूसरी जनरेशन के बाद क्या हुआ, ये है लेगेसी वर्सेस इनहेरिटेंस। फखलफ मिन बादिहिम खल्फ नदाउस्सला वत्तबौश्शहवात, फिर इनके बाद ऐसे इताअत ना करने वाले पैदा हुए, उन्होंने नमाज ज़ाया की और नफसानी ख्वाहिशों के पीछे पड़ गए। आज भी यही दो प्लेग है, नफ्स की ख्वाहिश में सारी रात स्पिल्स खेलेंगे, वीडियो गेम्स खेलेंगे, फोन पे खेलेंगे, इधर देख वॉन्डर ब्लाइंडी, इधर क्या हो रहा है, इस चैनल में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, ख्वाहिश है सिर्फ, रात को क्या खाएं, दिन में क्या हो, नाइट डील्स, फुलानी डील, फुला फुला, और दूसरा जुर्म नमाज ज़ाया होती। और जो सारी रात जागेगा ना, नंबर एक, अगर तो फजर पढ़ के नहीं सोया तो फजर तो पक्की की पक्की शहीद हो गई, और अगर बिलफर्ज जाग के फजर पढ़ ली तो उम्मीद हो सकती है कि जोहर भी कजा होगी और असर के साथ ही जाके कुछ मामला होगा। कई सारी रात जागते हैं, सारा दिन सोते हैं, नाइट शिफ्ट करना पसंदीदा नहीं है क्योंकि सारा दिन फिर वो इस गिल्ट में रहते हैं हम रात को जागे, और आपकी एक रात की नींद चली जाए, शायद 5 रातों तक भी आप सोएं तो वो जिस्म की एनर्जी लेवल पूरा नहीं होता। अल्लाह ने बॉडी बनाई फितरत के साथ है, सूरज के साथ उठिए और सूरज के साथ सो जाए, फिर देखिए आपके बिजली के भी इशू खत्म होते हैं, लोड शेडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे मुल्कों में रातों को लाइटें चलती हैं, हालांकि सूरज के साथ लाइटें बंद कर दें। जो लोग आज दुनिया में कामयाब है ना, और जिनका तذکرہ बड़ा बुरा लगता है लोगों को, क्या आप वेस्ट की इतनी तारीफ क्यों करती हैं, अल्लाह की कसम वेस्ट भी मेरे रब का है और ईस्ट भी मेरे रब का है, लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब। अच्छी खूबी चाहे सुमामा में थी, नबी ने उसका तذکرہ कर दिया, और बुराई चाहे इब्राहिम के बाप में भी थी ना, तो उन्होंने कह दिया अब्बा जी ये क्या कर रहे हैं, ये सीख रहे हैं हम, आप क्यों इस कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं कि ये तो वो तो ये, सारी दुनिया अल्लाह की है, अच्छी चीजें उन्होंने आपकी ले ली हुई हैं। ये भी बता दूं आपको, हमारे नबी ने कहा था मेरी उम्मत की सुबह में खैर है, अल्लाह के नबी की दुआ है कि मेरी उम्मत को सुबह में बरकत दे, फजर से लेकर सनराइज तक का टाइम बेहतरीन बरकत का टाइम होता है, सारे दिन की बरकत उस वक्त अधमुए हुए होते हैं, फर्जी दो पढ़ के सो जाएं तो बड़ी बात है क्योंकि रात जागे बैठे हैं, फितरत से खिलाफ निजाम है, बरकत नहीं आएगी, कोई काम सीधा नहीं होगा आपका अगर आपने अपने सोने और जागने की रूटीन को ठीक ना किया। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है फसौफ यलकौना गैया, बस इनका नुकसान इनके आगे आएगा, हाँ मगर इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालिहन, सिवाय इनके जो तौबा कर लें और ईमान लाएं और नेक अमल करें, ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे और इनकी जरा सी भी हक तलफी ना की जाएगी। कैसा प्यारा जुमला, जन्नाती अदन, हमेश की वाली जन्नतों में जिनका गायबाना वादा अल्लाह मेहरबान ने अपने बंदों से किया है, दिखाई तो नहीं बस शौक बढ़ा दिया, बेशक इसका वादा पूरा होने ही वाला है वो लोग वहां कोई लफ बात ना सुनेंगे, सिर्फ सलाम ही सलाम सुनेंगे। इनके लिए वहां सुबह शाम इनका रिस्क होगा। ये है वो जन्नत जिसका वारिस हम अपने बंदों में से इन्हें बनाते हैं जो मुत्तकी हो। कोई बात ढकी छुपी नहीं है इस कुरान में, वल्लाही। अब आगे फरिश्ते के आने और ना आने की तरफ कुछ इशारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाते से। हम बगैर तेरे रब के हुक्म के उतर नहीं सकते। कौन? फरिश्ते। हमारे आगे पीछे और इनके दरमियान की कुल चीजें इसकी मलकियत में हैं। तेरा परवरदिगार भूलने वाला नहीं। आसमानों का और जमीन का और जो कुछ इनके दरमियान है सब का रब वही है। तो इसी की बंदगी कर और इसकी इबादत पर जम जा। क्या तेरे इल्म में इसका हम नाम हम पल्ला कोई और भी है? जवाब दीजिए। कोई भी नहीं। उसकी तो मिसाल जैसा कोई नहीं। उसका तो हम नाम कोई नहीं हो सकता। वयकूलुल इंसान। और इंसान कहता है जब मैं मर जाऊंगा तो क्या फिर जिंदा करके निकाला जाऊंगा? क्या ये इंसान इतना भी याद नहीं रखता कि हमने इसे इससे पहले पैदा किया, हालांकि वो कुछ भी ना था? तेरे परवरदिगार की कसम, हम इन्हें और शैतानों को जमा करेंगे और जरूर जरूर जहन्नम के इर्द गिर्द घुटनों के बल गिरे हुए हाजिर कर देंगे। हम फिर हर हर गिरोह से इन्हें निकाल खड़ा करेंगे जो अल्लाह रहमान से बहुत अकड़े अकड़े फिरते थे। फिर हम इन्हें भी खूब जानते हैं जो जहन्नुम के दाखले के ज्यादा सजावार यानी लायक हैं। अल्लाह को खूब पता है किसको जन्नत में भेजना है किसको जहन्नुम में। अब अगली आयत हाईलाइट कर लीजिए। कुल सरात वाई मिन को मिल्ला वाही दुहा कान रबी का हतम मकदिया। तुम में से हर एक वहां जरूर वारिद होने वाला है। वारदा कहते पानी के ऊपर से गुजरना। पुल सरा जहन्नुम के ऊपर है, इस लफ्ज से भी साबित हो रहा है। ये तेरे परवरदिगार के जिम्मे कतई तयशुदा अमर है। सुम्मा नुनजिल्लज़ीना तक़व व नज़रुज़्ज़ालिमीन फीहा जिसिया। फिर हम परहेजगारों को तो बचा लेंगे और नाफरमानों को इसी में घुटनों के बल गिरा हुआ छोड़ देंगे। ये है जी पुल सरात जिसके बारे में अबू सईद खुदरी से रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया पुल सरात को जहन्नुम के ऊपर रखा जाएगा। इस पर कांटे होंगे जैसे सादान के कांटे। फिर लोग गुजरेंगे, कुछ लोग सही सलामत बच निकलेंगे, कुछ नाकस जिस्म वाले होकर आखिरकार बच निकलेंगे। फिर नतीजा ये होगा कि कोई निजात पा जाएगा, कोई वहां रोक लिया जाएगा और कोई सर के बल इसमें जा गिरेगा। ये किस्म का डिसेक्शन रूम है पुल सरात। यहाँ फिर लोग रोक लिए जाएंगे जहन्नुम के ऊपर। यहाँ इनकी डिसेक्शन होगी, हराम का खून यहाँ नचुड़ेगा। यहाँ लोगों के जिना की औलादें और जिना के मामलात का सफाया होगा और कुछ तो कट कट के जहन्नुम में गिराए जाएंगे। फिर गुनाहों की माफी के बाद इनको ऊपर उठाया जाएगा। अल्लाह हम सबको बचा के रखे। कसूर क्या था जिनके साथ बुरा मामला होगा? वैजा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात। जब इनके सामने हमारी रोशन आयतें तिलावत की जाती हैं तो काफिर मुसलमानों से कहते हैं बताओ हम तुम दोनों जमातों में से किसका मर्तबा ज्यादा है और किसकी मजलिस शानदार है? हम तो इनसे पहले बहुत सी जमातों को गारत कर चुके हैं जो साजो सामान और नामो नमूद में इनसे बढ़ चढ़ कर थी। कह दीजिए जो गुमराही में होता है अल्लाह रहमान इसको खूब लंबी मोहलत देता है यहाँ तक कि वो इन चीजों को देख ले जिनका वादा किए जाते हैं यानी अजाब या कियामत को। इस वक्त इनको सही तौर पर मालूम हो जाएगा कि कौन बुरे मर्तबे वाला और किसका गिरोह कमजोर है। यानी ये जो कंपटीशन था ना, स्टेटस कॉन्शियस थे, वहां जाके पता चलेगा कि किसको किस दर्जे की, किस मार्क की, किस ब्रांड की जहन्नुम मिल रही है। दुनिया में छोटी छोटी चीजों को अपने लिए बड़ी फखर की चीज समझते थे, वहां इनकी असल खुल जाएगी। इसके बरक्स व यजीदुल्लाहुल्लज़ीन अहतदौ हुदा वल्बाकियातु सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबं व खैरुन मरद्दा। और हिदायत याफ्ता लोगों को अल्लाह ताला हिदायत में बढ़ाता है और बाकी रहने वाली नेकियां तेरे परवरदिगार के नजदीक सवाब के लिहाज से और इंजाम के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन है। अल्लाह में बाकियातु सालिहात वाले अमाल करने वाला बना दे। आयात पे अमल, अपने घर वालों को नमाज और सदके का हुक्म दें और वक्त पर नमाज अदा करने की तंबीह करें। अच्छा हम क्या कहते हैं, गुस्सा आता है ना, पहले कहते हैं नमाज पढ़ो, फिर तो नमाज पढ़ो, फिर इससे आगे जो था वो मैं बोलना नहीं चाह रही। बस माएँ तो सुबह फजर पे सलवाते देख के बच्चों को उठाती हैं, ये भी गलत है। मैं एक जुमला बोलती हूँ, रिकॉर्ड तो हो ही रहे, बेटा उठिए नमाज पढ़िए। अब इस जुमले को कोई कॉपी करे और 10 दफा बोल दे तो जब दूसरी दफा मेरी आवाज आएगी तो कैसे आएगी? ऐसे ही आएगी ना। ये तो नहीं पहली दफा मैं कहूँ बेटा उठिए नमाज पढ़िए, फिर दूसरे बेटा उठिए नमाज पढ़िए, मेरी आवाज़ तो नहीं बदलेगी। एक ही टोन में बात करें, प्यार से बालों में हाथ फेरे, गुदगुदाएं, कंबल उतार दें, एसी बंद कर दें, माहौल घर कैसा बना दें कि सोने को दिल ना करे जागने को दिल करे। कोई तरीका इख्तियार कीजिए, बच्चों को फजर से पहले उठा के मस्जिद भेजें। 8, 9, 10 साल से लेकर इस उम्र में अगर बच्चे मस्जिद के नमाजी ना बने तो माजरत नहीं बनेंगे, फिर हमारे इंडो पाक कल्चर की तरह वो बस जुम्मे की नमाज की मस्जिद होगी उनकी या रमजानी मस्जिद होगी। 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाकर मर्द का पढ़ना क्यों लाजिम है? और ये बीवियां नहीं आते डाल सकती, बीवियों को तो एक घूर के दिखा देंगे वो दुबक के बैठ जाएंगी, ये माँ कर सकती है। आपके मियाँ को आप नहीं बदल सकती, अपने बेटों को बदलिए, अभी से सेट करिए, बच्चे खुद ही ले जाएंगे अब्बा को एक दिन, अल्लाह हिदायत दे। आज जवान बच्चे फिर भी पढ़ लेंगे, बाप कहते नहीं मैं घर पढ़ूंगा, साथ मस्जिद होती है नहीं पढ़ते, नीचे दुकान है मस्जिद के नहीं पढ़ते लोग नमाज, मुझे हैरत होती है। मस्जिद के दरवाजे पे बैठा बंदा नहीं पढ़ रहा, जमात के पढ़ लेंगे। एक पिज्जा फ्री मिल जाए ना, बाय वन गेट वन फ्री, तो देखिए आधी रातों को लाइनें लगी होती हैं। एक पढ़िए तो 24 फ्री हैं, 25 दर्जे या 27 दर्जे का लफ्ज आता है। हरम में 1 लाख नमाज, 1 लाख, कोई आपको 1 रियाल दे या 1 लाख दे, कोई है कंपैरिजन? नहीं नहीं छोड़े कोई बात नहीं। तो सोचिए हमारी तरजीहात कितनी कमजोर हो गई हैं आज। फिर इसी तरह से अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि आपको भी नफरात में शामिल करें जिनकी हिदायत में वो इजाफा करता है। क्या हर रमजान एक ही तरह का गुजार के चले जाएंगे? जैसे DQ24 था इसी तरह DQ25, रमजान 25, 26, कोई प्लान नहीं है। तो फिर जब रेनोवेट नहीं करेंगे ना अपने दीन को, तो ये एक वक्त आएगा बिल्कुल गिरने के करीब हो जाएगा। ईमान भी पुराना हो जाता है, हदीस है कपड़ों की तरह ईमान भी पुराना होता है, हमारे पुराने ईमान है जो कोई असर ही नहीं ला रहे। आज कोई रिवर्ट आ जाए उसकी आंखें गीली रहती हैं कुरान पढ़ के और दीन सीख के। फिर इस तरह सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ये कलिमात अदा कीजिए, क्योंकि ये बाक़ियात सालेहात में से एक हदीस से पता चलता है। कुरान से रहनुमाई, अपने हर मामले में सच्चाई की पाबंदी कीजिए, बेशक ये अम्बिया के अखलाक में से है। इबादत के लिए सब्र और जिद्दोजहद की ज़रूरत होती है, अपने नफ्स को इसकी मशक कराइए। जो संजीदगी और सच्चे जज्बे से इल्म के हसूल की कोशिश करेगा, अल्लाह ताला इसको मजीद इल्म और अमल सालेह की तौफीक देता है। गौर व फिक्र की बात है, अहले खाना दूसरों के मुकाबले में दावत और तबलीग के ज्यादा हकदार होते हैं। नमाज दीन की बुनियाद और इसकी असल है और बंदे का सबसे बेहतरीन अमल है। जन्नत में दिन और रात का वजूद नहीं होगा, वहां लोग हमेशा रोशनी में रहेंगे। अलबाकियातुस सालेहात में जिक्र अज़कार और वो साले अमाल हैं जो करने वाले के लिए हमेशा बाकी रहते हैं। तो शऊर से सुबहानअल्लाह व बिहम्दिही सुबहानअल्लाहिल अज़ीम कह लीजिए।